ओम शांति। आज का विषय है स्थिति बिगड़े नहीं क्या करें। पसंद है? जीवन में सब कुछ होता है। माताएं तो बहुत पीछे पीछे बैठ गई। किसी में है हिम्मत आगे आने की? माताएं बूढ़ी हो गई ना बेचारी, क्या करें। आ जाओ। स्थिति बिगड़े नहीं एक रस रहे। जीवन में सुख दुख भी आते हैं, हार जीत होती है, लाभ हानि होती है, मान अपमान होते हैं, घरों में भी कई झंझट हो जाते हैं, लेकिन स्थिति बिगड़े नहीं क्या क्या याद करेंगे। हमें अपनी स्थिति को एक रस रखने में ज्ञान का बल भी चाहिए, स्वमान का बल भी चाहिए, योग का बल भी बहुत चाहिए, शुभ भावनाओं का बल भी बहुत चाहिए। हम सभी कलयुग के अंत में रहते हैं। कलयुग में क्या क्या होगा? वही जो हो रहा है। क्या क्या? सदा अच्छा अच्छा या बुरा बुरा? है बुरा ज्यादा, अच्छा बहुत कम हो रहा है ना? तो क्या करेंगे उसे? स्वीकार करना है। इस बात की चर्चा हम बार बार करते हैं। हमें उन बातों को स्वीकार करना है जो हैं और रहेंगी। कलयुग का अंत आ गया है, बुरे से बुरी स्थिति है, मन की भी, तन की भी, बीमारियों की भी, समस्याओं की भी, संबंधों की भी बुरी से बुरी स्थिति है। जिसके यहाँ अच्छा है वो तो बहुत भाग्यवान है। कुछ परिवार बहुत अच्छे भी हैं, जिनमें सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन बहुतों में संघर्ष है। स्वीकार करना है कि ये कलयुग का अंत है। कलयुग का भारी प्रभाव सबके ऊपर है या नहीं? माताओं को पता हो न पता हो, 5 साल में भारत की सभ्यता ही बदल गई। 5 साल में स्कूल कॉलेजों में जाओ, क्या मिलेगा देखने को? क्या मिलेगा? मोबाइल। अब सुना तो है कि मोबाइल फ्री स्कूल बनाने की कोशिश हो रही है, कि कोई बच्चा स्कूलों में मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। मोबाइल्स ने तो ज्यादा गड़बड़ कर दी। इम्प्योरिटी बहुत बढ़ गई है। जो भारत पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, उसमें इम्प्योरिटी ने सब कुछ समाप्त कर दिया। तो कलयुग के अंत में तमोप्रधानता है। देखो, खाने की चीजें भी तमोप्रधान, पानी, फल, सब्जियां, दूध, सब तमोप्रधान है। तो क्या करना पड़ेगा माताओं को? क्या करना पड़ेगा माताओं को? दृष्टि देख के उसे पावन करना होगा। बहुत अच्छे अभ्यास करने होंगे ताकि पवित्र अन्न ही सबके पेट में जाए, क्योंकि अन्न का बहुत गहरा प्रभाव है। देखो, ध्यान से सुनेंगे, चिंतन करेंगे। शरीर है सभी के तमो प्रधान, अपवित्र शरीर है ना? शरीर के अंग अंग में अपवित्रता भरी है। पवित्र भोजन इसमें डालेंगे तो वो तो शरीर में जाएगा ना, अंग अंग को सुगंधित करेगा, शीतल करेगा। इसलिए ज्ञान मार्ग पर चलने में, सफलता पूर्वक चलने में शुद्ध अन्न का बड़ा महत्व है। केवल शाकाहारी नहीं, शाकाहारी अन्न भी बहुत तमोप्रधान हो गया है आजकल। हवा में भी क्या है, क्या है हवा में, इतना प्रदूषण है कि नाक से हम जो सांस ले रहे हैं तो न जाने अंदर क्या क्या जा रहा है, उसको तो रोक ही नहीं सकते। आंखें खुली हैं, आंखों से बहुत कुछ जाता रहता है अंदर। तो हमें एक रस रहना है। अब पहली चीज लेंगे सुख दुख में एक रस। जीवन में सुख भी है तो दुख भी है। कौन मनुष्य बहुत दुखी है संसार में, बोलो, जो ज्यादा सोचते हैं। अभी अभी मुझे एक ग्रुप से मिलने को हुआ, यहाँ आने में भी देर हो रही थी, मैं तो मिलके अपने कमरे में आ गया, कमरे में ही आने लगे। माता आई, चार आई, एक का बाप शराब पीता है, पति नहीं बाप, ये बहुत दुखी है और छह मास से इसने उसे बात करना ही छोड़ दिया है। अब बात न करना ये एक बात है, लेकिन बात न करने का इफेक्ट जो होता है मन पे, वो उसकी लड़की है ना, प्यार भी तो है ना बाप और बच्चों का, लेकिन बात नहीं करना है उसको, लड़की टाइट हो गई है, बात नहीं करना है। कहने लगी मेरा डैडी जैसे देवता है, शराब नहीं पिए तो देवता, इतनी अच्छी धारणाएं हैं उसकी, और शराब पी तो लड़ाई झगड़ा असुर, यही बोला उसने भी। तो क्या करूं, वो बहुत दुखी है, जबकि अलग है, बाप अपने घर में, ये मैरिड है, ये अपने घर में है, इसका परिवार अच्छा है, लेकिन बहुत सोच रही है, बहुत सोच रही है, तो दुखी है, आंसू ही आते रहते हैं। सोचने से शराब छूट जाएगी उसके, मैंने उसको विधि बताई, पर सोचने से तो शराब नहीं छूटेगी। अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो अच्छे वाइब्रेशंस उसके मन को बदलेंगे। दुखी वही बहुत ज्यादा है जो, अब दूसरी बात, इच्छाएं ज्यादा रखते हैं, और एक बात जिसको फीलिंग बहुत आती है, किसी ने कुछ कहा और दुखी हो गए, कहने वाला सुखी सुनने वाले दुखी, होता है या नहीं। इसी हॉल की एक घटना जो मैं कई बार सुनाई है, बाबा मधुबन वालों से मिल रहे थे, पर वो बात बहुत सुंदर है, हमें रोज याद करनी चाहिए। एक एक मिलते थे भाई, मिलकर पूरे हो गए, फिर बहनों का टर्न आया, एक बहन ने बाबा कहा, बाबा मुझे सब बहुत बोलते हैं, मेरी स्थिति बहुत बिगड़ती है। बाबा ने जो कुछ उसे कहा था वो बहुत पावरफुल चीज है, मुझे तो बहुत काम आया जीवन में, उसे आया हो या ना आया हो, और आप सबको बहुत काम आएगा। बाबा ने कहा, बोलने वालों का काम है बोलना, और तुम्हारा काम है एक रस रहना। फिर कहा, जब बोलने वाले नहीं बोलना छोड़ते तो तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ती हो। बहुत सुंदर बात है ये। जो व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है, नाजुक है, उसे दूसरे की हर बात दुखी करती है। अब बोलने वाले बोलना छोड़ेंगे, उनको तो और मजा आएगा, आपकी स्थिति बिगड़े। जैसे बच्चे देखे होंगे ना, बुढ़िया माँ को तंग करते हैं, बुढ़िया तंग होने लगे तो उन्हें बड़ा मजा आता है, और तंग करेंगे। और बुढ़िया माँ उन्हें बुला के प्यार करे तो बस तंग करना छोड़ देंगे। तो बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ेंगे, हमें अपनी स्थिति को भी नहीं छोड़ना है। बहुत ये सुंदर बात है, तब से मुझे याद रहती है, ये इसी होल की बात है। बहुत साल हो गए, 30 साल हो गए होंगे। पसंद है बात? मनुष्य के हाथ में है वो दुखों में भी दुखी रहे या दुखों में भी सुखी रहे। बोलो क्या विचार है भाइयों का? ठीक है ना बात? ये मनुष्य के अपने ऊपर है कि वो दुखों में भी सुखी रहे। ये विदेशी आते हैं ना हमारे पास, अब आने लगे ना यहाँ। शुरू में जब आए तो कोई कोई एक बात कहा करते थे, आई एंजॉय सोरो। इसका अर्थ है कि मैं दुख का भी आनंद लेता हूँ। दुख है तो ठीक है, अब है उसी में जीना है। दुख है तो है उसी में जीना है, क्योंकि इनके पास दुख और बहुत तरह के होते हैं। दुखों में सुखी रहना ये अपने हाथ में है। दुख माना बीमारियों में सुखी रहना, ये अपने हाथ में है। फिर माताओं से पूछता हूँ, है या नहीं? जरा सा कोई कुछ कह दे और हम अपनी खुशी खो दें तो ये हमारी हार हुई या जीत? हमें हारना नहीं है, दृढ़ संकल्प कर लें, हमें हारना नहीं है, हराना है। पसंद है ये बात भी भाइयों को? पसंद है? हारना नहीं है, जो बोल रहे हैं उनको हरा देना है। और हमारी स्थिति अगर बिगड़ी नहीं तो हमने हरा दिया, और बिगड़ गई तो हम हार गए। तो ये हमेशा याद रखेंगे, आज सुख है कल दुख आ सकता है। आज हमारे पास बहुत धन दौलत है, संपत्ति है, कल वो समाप्त हो सकती है। हमें हर चीज को स्वीकार करके जो कुछ है उसमें सुखी हो जाना चाहिए। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो सुखी रह सकता है। तो आज दुख है कल सुख भी आएगा, सदा दुख भी नहीं रहेगा। अगर हम ये संकल्प करेंगे कि हमारे दुखों के दिन समाप्त हो जाएंगे, जल्दी सुखों के दिन आने वाले हैं, तो दुख समाप्त, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। और अगर हम ये सोचने लगे कि ये दुख तो पता नहीं कब जाएंगे, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए आत्मा की जो सातों क्वालिटी हैं, उसका इस तरह अभ्यास करेंगे सभी। मैं आपको एक छोटी सी विधि बताता हूँ, कल सवेरे उठते ही, आज रात से भी शुरू कर सकते हैं, 5-7 मिनट आत्मा का इस तरह अभ्यास करना। मैं आत्मा हूँ, मस्तक सिंहासन पर अपने स्वरूप को देखना। अब आत्मा के जो सातों गुण हैं, उनका इस तरह अभ्यास करना, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। इस शब्द को चेंज कर दे जरा, मैं बहुत सुखी हूँ, बाबा आपने मुझे बहुत सुख दिया, आपको पाकर मैं बहुत सुखी हो गई, दुख समाप्त हुए, कोई भी बात मेरे सुख को मुझसे छीन नहीं सकती, मैं बहुत सुखी हूँ, ईश्वरीय सुख मेरे साथ है। एक गुण। दूसरा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब स्वरूप को हटा दो जरा, क्यों मैं कह रहा हूँ हटाने की? आप कहेंगे इतना अच्छा शब्द हटा क्यों दें? आदत पड़ गई है कहने की, बोर हो गए हैं कहते कहते, कोई असर नहीं रहा उसमें। होता है ना ऐसे ही? अब करेंगे, मैं आत्मा संपूर्ण शांत हूँ, मेरा चित्त शांत है, मेरे पास शांति की शक्ति है। बाबा जब से तुम मिले मेरा जीवन शांति से भर गया, मैं बहुत शांत हूँ, शांति मेरा आनंद है। चिंतन, ठीक है। तीसरा गुण ले लें, पवित्रता। मैं परम पवित्र हूँ, सभी विकारों से मुक्त हूँ, पवित्रता तो मेरी नेचर है, पवित्रता तो मेरा आनंद है, मैं परम पवित्र हूँ। ऐसे सातों को करना। प्रेम स्वरूप हूँ तो मैं प्यार से भरपूर हूँ, मैं ये प्यार सारे संसार को बांट सकता हूँ। बाबा आपने मुझे बहुत प्यार दिया, आपके प्यार को पाकर हम निहाल हो गए, हम दुखों से मुक्त हो गए। रोज जब आप मीठे बच्चे कहते हैं तो हमें बहुत गहरा प्यार महसूस होता है, होता है या नहीं? बहुत सुनाते हैं मुझे ये बात कि मीठे बच्चे सुना और एक सुखद फीलिंग कि भगवान के सिवाय ये भाषा कोई नहीं बोल सकता। तो इस तरह आत्मा के गुणों को ऐसे करना, मैं ये हूँ, तो हम बनते जाएंगे। नहीं तो कहते आ रहे रोज मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, और हाल कैसा है? वैसे का वैसा ही जैसा था पहले। जैसे हम किसी दूसरे को कहते हूँ ऐसा लगता है ना, अब स्वीकार करेंगे मैं ये हूँ। और ये सूक्ष्म मनोविज्ञान है कि अगर हम ये करते हैं ना, मैं बहुत सुखी हूँ, तो हमारा सुख बढ़ता जाता है। ये सभी सीख लें, मैं बहुत सुखी हूँ। आपके मन से ये आवाज निकलती रहे दिन में भी, योग अभ्यास के समय नहीं, दिन में भी, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं भरपूर हूँ, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया। करके देखो कल, आपने मुझे सब कुछ दिया, सब खजानों से भरपूर कर दिया, मैं बहुत सुखी हूँ। मजा आ जाएगा एक ही दिन में, बाबा की समीपता का बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा, हम बहुत समीप हैं उसके। फिर वहीं आए सुख दुख में समान, परिवारों में कुछ हो जाए। टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि दुख देने वाली बातें बहुत हैं दुनिया में, और विनाश काल तो क्या हो जाएगा, बाबा के शब्दों में दुखों के पहाड़ गिरेंगे। बाबा कहा करते हैं, अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान हैं, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। हमें क्या करना होगा? क्या करेंगे? सबको दान देंगे, वाइब्रेशंस देंगे, ताकि दुखों में सभी के दुख कम हो जाए, उन्हें दुखों को सहन करने का बल मिल जाए। ये बहुत जरूरी है, वो समय हमारे सामने जल्दी ही आ रहा है, अब देर नहीं है। पहले तो कहते थे आएगा, अब उस समय के बिल्कुल हम समीप पहुंच चुके हैं, जहां उन आत्माओं के द्वारा जिन्होंने अपने को भरपूर किया है, जिन्होंने संगम युग के समय को सफल किया है, जिन्होंने बाबा से सब कुछ पाया है, वो संसार को देंगे, और ये बहुत बड़ा काम होगा। उनके पीछे संसार होगा, वो केवल देंगे नहीं, संसार उनके पीछे होगा। तो एक बहुत वंडरफुल समय हमारे सामने आ रहा है। देखो, बहुत दुख होता है किसी को जब उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी दुख की बात वही होती है ना। कुछ माताएं भाई उसको सहन कर लेते हैं, कुछ लोगों से सहन नहीं होता। मेरे पास ऐसी कई माताएं आई, माता की आयु 70 साल, पति की आयु थी 75 साल, पति का शरीर छूट गया, अब माता डिप्रेशन में है, क्योंकि मोह रहता है ना, साथ रहे हैं लंबा काल, मोह रहता है, डिप्रेशन में है, ज्ञान में भी है और डिप्रेशन में है। ये दुख, मृत्यु का दुख कैसे सहन करेंगे? मृत्यु के दुख में भी हमें एक रस रहना है, क्या याद रखेंगे? बोलो, आप ही बोलो। बुढ़िया माता बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है, बोलो। लगती है ना देवी, बिल्कुल मस्त बैठी है, बोलो। किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या याद करेंगे? पता नहीं, पता तो है, बोलो बोलो। और तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो क्या याद करोगे? नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, चिंता न करो। क्या याद करेंगे मृत्यु के समय? ड्रामा से भी पहले आत्मा की स्मृति लाएंगे कि ये मृत्यु तो देह बदलने का नाम है, आत्मा नहीं मरी है, कहीं और जाके जन्म ले लिया है, हो सकता है हमारे आसपास ही हो या हमारे परिवार में हो, क्योंकि कर्मों का नाता तो वहीं रहता है ना, वहीं घूमता रहता है। तो मृत्यु को भी इस तरह से हल्का करना होगा। मैं आज शाम को एक चीज का बड़ा आनंद ले रहा था, आप भी लिया करें। बाबा ने ये संसार का खेल कितनी बार देखा होगा? आज मुरली में था ऐसा ही कुछ सवेरे, कितनी बार देखा है? अनगिनत बार, सोच लें 10,000-20,000 बार। अनगिनत में से 20,000 बार सोच लें कि बाबा ने 20,000 बार ये खेल देखा है। सब कुछ नष्ट होते हुए, सतयुग आते हुए, बच्चों की स्थिति ऊपर नीचे होते हुए, उन्हें समझाते हुए, ये सब उसने अनंत बार देखा है। तो कैसा लगता होगा उसे फिर देखना? बोरिंग? कल की बात है, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, मैं सोच रहा था शिव बाबा की वास्तविक स्थिति कैसी रहती होगी। नो इफेक्ट, सब चल रहा है, ऐसे ही तो चलता रहा है सदा। कोई ज्ञान छोड़ गया, कोई उसे गाली दे रहा है, कोई संशय बुद्धि हो रहा है, कोई परेशान हो रहा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हजारों बार उसने ये सब खेल देखा है। विनाश होगा, उस पर कुछ असर पड़ेगा? मेरे बच्चे बड़ा कष्ट पा रहे हैं, कष्ट तो होता है ना, असर होगा? नहीं, बिल्कुल साक्षी निर्लिप्त स्थिति है उसकी। यही निर्लिप्त स्थिति महान योगियों की भी होनी चाहिए। देखो, मैं सोचा करता हूँ आपको खोल के ही बता देता हूँ, दादी जानकी को बड़ा कष्ट हुआ, आपको तो नहीं पता होगा, अभी अभी नजदीक में एक मास के अंदर बड़ा कष्ट हुआ उन्हें, वो कष्ट देखा नहीं जा सकता था। बाबा के पास भी संदेश जाते थे और अचानक वो ठीक हो गई। पता है आपको, वो अचानक ठीक हुई, मृत्यु की तरफ चली गई थी और ठीक होके फट से शांतिवन में आ गई। कहा मुझे शांतिवन ले चलो, यहाँ नहीं रहूंगी मैं हॉस्पिटल में, जैसे बाबा उनको प्रेरणा दे रहा था, और वो शांतिवन में आ गई। मैं भी मिला था, एक दो दिन के बाद ही जब आई, वीक तो बहुत थी पर ठीक हो गई और बहुत खुश। तो मैं सोचता हूँ, आप भी सोचते होंगे, बहुत पीड़ा हुई थी उनको, पेट दर्द असहनीय, कोई नहीं सह सकता उसको संसार में, और शिव बाबा क्या करता होगा? नहीं, केवल साक्षी नहीं, मदद भी, साक्षी के साथ मदद भी। और ऐसा निकाल दिया उनको, वो सुना रही थी, अपनी जयंती बहन भी आई थी, वो सुना रही थी, मैंने दादी को 6 बार मृत्यु से वापिस आते देखा है, ये 6ठी बार था, बिल्कुल मैं जैसे कह रहा मैं खोल के ही बता रहा हूँ, हम सब ने मान लिया था दादी अब जाएगी बस, लेकिन फिर से जीवित, और जीवित अच्छी तरह, ऐसे बुरी तरह नहीं, एनर्जेटिक, फिर से क्लास कराने के लिए तैयार। विदेशी आ रहे हैं, आओ भाई सब आ जाओ, क्लास कराऊं, सुनाऊं कुछ, क्योंकि दादी का नियम है ना, जब तक वो किसी को ज्ञान न दे दे नाश्ता नहीं करती। तो दादी अहमदाबाद में थी ना 3 मास पहले, हम भी गए मिलने, तो मुरली पड़ रही थी नाश्ता, तभी तभी बाहर आई थी, तब भी बहुत भारी स्थिति थी उनकी, तभी तभी कमरे से बाहर आके बैठी सिटिंग रूम में अपने। तो हम गए, कहा रे आओ आओ, मैं तो याद कर रही थी कोई आ जाए, सुनो मुरली। हम समझ गए, मैं जानता हूँ, मुरली सुनाई हमें 15 मिनट सुनाई, और हम जान गए अब वो नाश्ता करेगी, उसके पहले नाश्ता नहीं करती, राखी बांधी, राखी से पहले की बात है। हमने कहा दादी हाथ में ही दे दो, कहा नहीं बांधूंगी, हाथ काम तो नहीं कर रहे थे लेकिन बांधी। तो उनका जो टॉनिक है वो क्या है पता, उनकी असली दवाई ज्ञान सुनाना, इसलिए उनकी इस दवाई को बंद नहीं करना चाहिए, न वो करने देती। आज भी हमारी दीदी सुना रही थी ज्ञान सरोवर में कि बस विदेशी आए हैं और कहती रहती है सबको बुलाओ मेरे पास, मैं क्लास कराऊंगी। ब्राह्मणियां रोकती हैं कि दादी अब शांत हो जाओ थोड़ा, नहीं बुलाओ सबको। तो ये बहुत बड़ी चीज है ना, दुखों को दुख न मानना, हर दुख को पार कर लेना। पार करना कभी कभी भारी पड़ता है, पर जब पार हो जाए तब हमारी स्थिति पर पास्ट का इफेक्ट न रहे, फिर से हम फ्रेश ताजगी में आ जाए। तो सुख और दुख में समान रहना, इस पर सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। कैसा भी दुख जीवन में आता है आ जाए, विनाश काल में तो मृत्यु ही मृत्यु होगी। बाबा का एक महावाक्य मैं कई बार सुनाया है यहाँ, 84 की मुरली का है, अव्यक्त मुरली का, कि विनाश काल में बहुत जल्दी जल्दी सबके पुनर्जन्म होंगे, एक एक डेढ़ डेढ़ साल में ही, मृत्यु हुई पुनर्जन्म, मृत्यु हुई फिर जन्म, फिर थोड़े दिन में मृत्यु हो गई फिर जन्म। क्यों होगा ये है? हाँ, क्योंकि जन्म और मृत्यु में ही आत्मा को सबसे अधिक सजाएं होती हैं। तो उनके जो लंबे चौड़े हिसाब किताब हैं वो चुक्त हो जाएंगे बार बार जन्म और मृत्यु में। तो बहुत होगा ना ये सब, अब सबको लगेगा अरे बच्चे मर गए, देखने वालों को सुनने वालों को तो लगता है ना, उन्होंने बच्चे मार दिए, आतंकवादियों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पर ये सब क्या है, वही खेल है कर्मों का। प्राकृतिक प्रकोप होंगे, शहर के शहर एक साथ नीचे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ऊपर से पानी आ जाएगा। तो विनाश के सीन बहुत भयानक होंगे, मरने वालों को भी कष्ट और देखने वालों को भी कष्ट होगा, लेकिन दुख में भी हम अपनी स्थिति को एक रस रखें, इसके लिए अच्छे अच्छे संकल्प रखने होंगे। जैसे बाबा ने एक सुंदर संकल्प दिया था, लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, और तुम क्या कहेंगे, नहीं वहां थोड़ा ही कहेंगे, लोग लड़ाई लड़ाई कर देंगे आपसे अगर वहां कह दिया तुम, लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, और तुम कहेंगे अपने घर मुक्ति धाम गया, बहुत समय की मुक्ति की इच्छा पूरी हो गई। ये संकल्प हैं, ये याद रखने पड़ेंगे विनाश काल में। दूसरों के मरे तब तो कहना सहज रहेगा, घर गया या ड्रामा था लेकिन अपने मरे। मनोहर दादी हंसाती थी बहुत, दूसरे की माँ मरी फट से ड्रामा कह दिया, कोई बात नहीं अपनी मरे तब ड्रामा कहो। तो कुछ अच्छी ज्ञान की बातें याद रखनी होंगी, ऐसी ज्ञान की बहुत ज्यादा नहीं, चार पांच बातें ही याद करके अपने पास आप लिखेंगे, क्योंकि ये बातें बहुत काम आएंगी। अभी से इनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए ताकि उस समय याद आए, नहीं तो जब घटनाएं होती हैं मनुष्य को याद नहीं रहता, जैसे मृत्यु हुई तो क्या सोचेंगे, कर्मों का हिसाब किताब इतना ही था, क्यों मुझे छोड़ के चला गया मेरा बेटा, रोना तो इजी है और ये संकल्प करने भी नेचुरल हैं, लेकिन हमारा उनसे कर्मों का हिसाब किताब इतना ही था, ये स्मृति चित्त को शांत करेगी। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स कि अब ये खेल कलयुग का पूरा होने वाला है, अब तो हमें घर सबको घर चलना है, अब ये दुख धाम पूरा हो रहा है, सुखों के दिन आने वाले हैं, ये स्मृति हमें दुखों की फीलिंग से मुक्त रखेगी। अब दूसरी बात पर आ जाएं, निंदा स्तुति में समान, जैसे महिमा सुनकर हमें बहुत आनंद आता है, निंदा सुनकर क्या हो आनंद आए आएगा क्या, कुछ और बोलो, आएगा तो नहीं। महिमा सुन के बहुत खुश हो जाते हैं हम सब, निंदा को भी हम स्वीकार करना सीखें कि जीवन में महिमा है तो ग्लानी भी है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी सदा महिमा ही महिमा हुई हो। देखो स्वामी विवेकानंद की लोग बड़ी महिमा करते हैं, तब भी बहुत महिमा हुई थी, लेकिन निंदा करने वालों की भी कमी नहीं थी। बहुत लोग विदेश में ही क्रिश्चियन मिशनरी, थियोसोफिकल सोसाइटी वाले और भी कई भारत की संस्थाओं वाले बहुत ग्लानी कर रहे थे उसकी, ये तो मछली खाता है। अब बंगाल में तो मछली खाना कॉमन बात होती है, सभी खाते हैं, उसे मांसाहार समझते भी नहीं है, घर घर में तालाब रहता है, रहता है नहीं माता जी, घर घर में तालाब। मैं भी गया तो मैं देखा हर घर के आगे तालाब था, मैंने कहा ये फैशन है क्या यहाँ, कहा नहीं इनमें मछली पाली जाती है। तो जिसकी महिमा उसकी ग्लानी भी, कभी कभी तो ऐसा होता है जितनी ज्यादा महिमा उतनी ही ज्यादा ग्लानी भी, क्योंकि अगर महिमा बहुत होगी तो कुछ लोग चिढ़ेंगे जरूर, वो चिढ़ के ग्लानी करेंगे, इसलिए क्या करेंगे और कुछ कर देगा। अच्छी बात, बहुत सुंदर ये प्रैक्टिस है, सूक्ष्म है, महिमा हो तो उसे बाबा को समर्पित करें। अगर महिमा सुनकर हम बहुत फूल गए, माना हमने उसे स्वीकार कर लिया, तो जब अगर हम महिमा को स्वीकार करेंगे तो ग्लानी को स्वीकार करने की ताकत नहीं रहेगी, महिमा को समर्पित किया तो ग्लानी का असर भी बहुत कम होगा, उसको भी समर्पित कर देंगे। सभी को छोटे हैं या बड़े, सबको ये दोनों चीजों का सामना करना पड़ता है। सेवाधारी आए हैं कुमार बहुत, मान लो आपने बहुत अच्छी सेवा की और किसी ने कह दिया ये तो कुछ नहीं करता, तो क्या होगा, ये ऐसी स्थिति बनती रहती है कई बार, कुछ के साथ ऐसा होता रहता है। एक कुमार बेचारा बहुत अच्छी सेवा करता, जब जा रहा था तो उसको कह दिया कि इसने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छी सेवा नहीं करता था। अब वो तो बेचारा रोए कि मैं तो बहुत सच्चे दिल से काम किया है, देखो मुझे इन्होंने क्या कह दिया, अब ये मेरी टीचर को न कह दें, आगे का खतरा उसे। तो मैंने उसे हल्का किया, लेकिन वो हल्का सहज नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा तुमने तो अच्छी सेवा कर दी ना, वो बाबा के पास जमा हो गई। अभी इसने कह ही दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जमा हो गया। कि नहीं, अगर ये मेरी दीदी को बता दे तो वो मुझे आने नहीं देगी दोबारा, खतरा यहाँ था। तो मैंने उसे कहा नहीं, वो तुम्हारी दीदी को नहीं बताएगा, तुम ख्याल न करो, हो सकता है उसने किसी भाव से कह दिया हो, ऐसे ही किसी को कह दिया हो, किसी और ने ज्यादा अच्छा काम किया हो, तुमने कम किया हो, या किसी की ईर्ष्या रही हो इसलिए कह दिया गया हो। तो इन चीजों को समर्पित करके चलना और अपने को बहुत हल्का रखना, इसकी जरूरत है। हल्का, हाँ अभी याद दिला दो आप। देखो एक बहुत अच्छी बात सुनाई, अपने को एक रस रखने के लिए याद करेंगे दोनों बात, ये बात बड़ी या बाप बड़ा, मेरी स्थिति बड़ी या ये बातें बड़ी। मान लो उसके इन शब्दों से वो अपनी स्थिति को बिगाड़ कर घर जाता है, और कोई उसे कहे कि भाई अपना अनुभव तो सुनाओ मधुबन, एक मास सेवा करके आए हो, तो क्या सुनाएगा बेचारा, परेशान होगा ना, निकलेगा भी नहीं उसके मुख से कुछ शब्द। इसलिए स्थिति बड़ी बातें बहुत छोटी, तो सीधा एक संकल्प करना है, ये बातें बहुत छोटी हैं, बड़े तो हम हैं, पूर्वज हैं, मानप्रस्थी हैं हम सब, बड़े तो हम हैं। तो इन छोटी छोटी बातों से अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। निंदा, और इसके बाद इससे भी भारी बात क्या होती है, अपमान। मान मिले, हर एक को मान की इच्छा भी है। देखो कुत्ते को भी सम्मान दे दो, पूंछ हिला के बैठ जाएगा आपके पास, हो गया नहीं। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर प्राणी सम्मान चाहता है, प्यार भी चाहता है, सम्मान भी चाहता है, लेकिन अपमान भी होना ड्रामा में नोंद है। बड़े से बड़े व्यक्ति को अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं, माताएं जानती हैं, जिन बच्चों को आप बहुत प्यार से पाला है, जिनके लिए आप शायद शायद रात जगी हैं, वो अपमान करने में देर नहीं करते, होता है या नहीं। तो माताएं बेचारी पी जाती हैं, बच्चा है, लेकिन भारी तो पड़ता है, खुशी तो गुम होती है, माताओं को भी असर पूरा आता है, मुझे माताएं बताती हैं। क्योंकि आजकल कलयुग का अंत है, बच्चे कई बुरे संग में आके बिगड़ जाते हैं, रात रात को देर से आते हैं, फिर लड़ाई भी करते हैं, खाना गरम चाहिए, ये नहीं ये। एक माता ने फोन किया कि मेरा लड़का 12वीं में पढ़ता है, बुरे संग में आ गया है, रात को 12 बजे आएगा, खाना गरम करके दूं, थाली फेंक देता है, ये क्या बनाया है, नई सब्जी बनाओ उसके पसंद की। कहा मैं तभी वो बना के देती हूँ, मुझे 1:30 बज जाता है सोने, मैं अमृत वेले कैसे उठूं। असली रोना अमृत वेले का, कैसे उठे। मैंने कहा अभी तुम डबल इस परेशानी में क्यों रहती हो, 1:30 बजे सो के कोई 4 बजे उठेगा क्या, उठेगा भी तो फिर सो जाओगी योग में, इसलिए सो लो अच्छी तरह, इसे स्वीकार करो। मैं क्या रास्ता निकालें, 4 बजे उठे, माताओं का क्या विचार है, उठे योग लगेगा तो उठ के क्या करे, सोए। ऐसी परिस्थिति जिनके पास है वो इस चीज को स्वीकार करे। देखो मैंने उसको जो सिखाया, तुम सो मजे से, 6 बजे तो उठोगी, कहा 6 बजे उठती हूँ, 6 बजे से ही योग लगाओ, अच्छा परेशानी को निकालो मन से, उस बच्चे को योगदान दो, और तुम भी परेशान, मेरा अमृत वेला में ये कहाँ से पूत पैदा हुआ है, होते ही मर जाता तो अच्छा होता, इसने तो मेरा बाबा भी छुड़ा दिया, ये सोचने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, खुद भी परेशान, बच्चा भी और बिगड़ता जाएगा। इसलिए ये नहीं, कुछ चीजों को स्वीकार करके अपनी दिनचर्या को सेट कर लेना चाहिए। इस संघर्ष से कोई फायदा नहीं होगा। अब क्या होता है ऐसी माताओं का, मान लो 1:30 बजे सोई, अब अमृत वेला तो करना ही है, 4 बजे उठी, बैठ गई योग में और सोने लगी, 5 बजे आंख खुली, अरे अमृत वेला पूरा हो गया, कैसा जीवन है, योग में भी नींद आती है, और परेशान हो गया नहीं, और उदासी मन में, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब जब है ही ऐसा कि 1:30 बजे सोना है, खुशी से सो, 6 बजे तक सो, 6 बजे उठ के योग करो, शाम को अच्छा योग करो, अपने लड़के को योगदान दो, तो ये समस्या भी हल हो जाए। इस तरह के किसी भी संघर्ष में जीवन को दुखों में नहीं लाना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कुछ चीजों को स्वीकार कर लें। माताओं की ये समस्याएं ज्यादा हैं। पति 12 बजे ही आता है ऑफिस से, बिजनेस है बड़ा, पति 12 बजे ही आएगा, खाना पीना खिलाते 1 बजे सोती हूँ, फिर 4 बजे। तो मेरी ये राय होती है सबको कि नहीं, नींद पूरी करो, अब 1 बजे सोए, 6 बजे उठो, आनंद लो फिर, नहीं तो परेशान हो रही हैं, मेरा अमृत वेला मिस हो गया, बाबा क्या कहेगा। इस परेशानी से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए जैसी जैसी जिसकी परिस्थिति है, अपनी दिनचर्या को वैसा ही सेट कर लेना चाहिए। टेंशन में नहीं रहना, खींचा तान में नहीं रहना है। बाबा ने ये बात सिखाई थी कि मान लो अमृत वेला किसी कारण से नहीं होता, तो शाम को योग करो 1 घंटा, 6:30 से 7:30, ये तभी की हमारा नियम बना हुआ है। किसी को बाबा ने ये विशेष कहा था, उनको हाई ब्लड प्रेशर था तो रात को सोने में देर हो जाती थी, उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा मेरे से तो सवेरे उठा नहीं जाता, देर हो जाती है, 12 बजे तक जगना पड़ता है। तो उनको भी बाबा ने कहा कि जैसा महत्व अमृत वेले का है, वैसा ही श्याम के योग का भी है, तो यहाँ यज्ञ में श्याम का योग प्रारंभ किया गया, उन्होंने ही कराया था। तो अपने को खींचा तान में लाकर, संकल्पों में लाकर परेशान नहीं करेंगे, याद रखेंगे जीवन एक सुंदर यात्रा है, इसमें सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, लाभ हानि, सफलता असफलता, निंदा ग्लानी, ये सब होगी। होगी या नहीं? हम सतयुग में नहीं है कि कोई हमारा अपमान न करे, कोई हमारी ग्लानी न करे, हम कलयुग के अंत में हैं। तो इन्हें प्यार से स्वीकार करके इन्हीं में से अपनी उन्नति का मार्ग निकाल लेना है। मुझे शुरू में ही बाबा से एक बहुत अच्छा महावाक्य मिला था, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो है जो हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढ ले। मान लो बहुत बिजी हैं, अभी मेरे पास दो, एक बहन एक भाई आए सेंटर में, दोनों कहा सेवाओं का प्रेशर बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर, हमारा पुरुषार्थ तो बिल्कुल नहीं होता। विचार करें अब इस बात पे, का सेवाओं का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होता। मैंने एक बात कही उन्हें, अगले 5 साल में ये संभव है सेवाओं का प्रेशर अब से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाए सेंटरों में, क्योंकि खेल समाप्ति की ओर जा रहा है और देवकुल की सभी आत्माएं आएंगी। तो क्या पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे? जब तक सेवा का प्रेशर महसूस किया जा रहा है, प्रेशर समझते हैं ना माताएं, सेवा का दबाव, सेवा की टेंशन, सेवा में बहुत बिजी, सेवा के बाद टाइम नहीं मिलता, तो तो कोई पुरुषार्थ होगा नहीं। जो टाइम मिलने की इंतजार कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकेंगे। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही जो हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढ ले। और जिसे अच्छा पुरुषार्थ करना होता है उसके पास समय है। समय उनके पास नहीं है जिनको अच्छे पुरुषार्थ का लक्ष्य नहीं है, जिनके पास पुरुषार्थ की कोई प्लानिंग नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, तो वो ये कह देते हैं समय नहीं मिलता। और अगर आज टीवी पे कोई अच्छा सीरियल आ रहा हो 2 घंटे का, बोलो आगे 2.5 घंटे निकल जाएंगे, आधा घंटा चर्चा के लिए भी निकल जाएंगे या नहीं। तो जहां करने की इच्छा है वहां कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तो समय से पहले ही सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लें, एक रस रहने का। ओम शांति। अभी तो ट्रैफिक कंट्रोल है, जब सब चले जाएं तब गीत गा लेना। अभी ट्रैफिक कंट्रोल है भाई, इसका गीत सुन के जाना सभी।
प्रभु का ध्यान।